आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने बीएसएफ को दुनिया में जदीद तरीन और एक जारहाना फौज बनाने के लिए 5 साल का निशाना मुकर्रर किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में बजट से पहले के 11वीं सलाह मशवरे की सदारत की। भारत के 56वें बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। बांग्लादेश में आज सुबह 5.7 शिद्दत का जलजला आया और बैडमिंटन में सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन से बाहर हो गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगला एक साल सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ को जदीद बनाने और इसके अमले की फलाह बहबूद के लिए होगा। गुजरात के शहर भुज में बीएसएफ के यौम तासीस की डायमंड जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर दाखला ने कहा कि उनकी वजारत ने बीएसएफ को दुनिया में जदीद तरीन और जारहाना फौज बनाने के लिए 5 साल का निशाना मुकर्रर किया है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि ई बॉर्डर सिक्योरिटी के जो हुकूमत का एक बड़ा कदम है, नए तस्वुर पर अमल दरामद में बीएसएफ का अहम रोल है।
गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे, ये भी संकल्प गृह मंत्रालय ने लिया है।
बीएसएफ की हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि फौज ने मनुष्यात की नाजायज तैयारी की रोकथाम के मकसद से मुख्तलिफ कार्रवाईयों में 12,95,000 करोड़ रुपए मालियत की नशीली अशिया जब्त की हैं। शोरिश पसंदी के मुकाबले के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने बीएसएफ के काम की तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म से पाक हो जाएगा। उन्होंने खास तौर पर कहा कि चंडीगढ़ में बीएसएफ की कार्रवाई की वजह से 117 माओनवाजों ने हथियार डाले, 73 को गिरफ्तार और 22 को हलाक किया गया। वजीर दाखला ने कौमी सलामती और जमहूरियत के सिलसिले में एक मजबूत बयान दिया है, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि सियासी कयादत के सिलसिले में कोई फैसला भारत के शहरियों पर ही मुनहसिर है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज बजट से पहले के सलाह मशवरे की सदारत की। ये सलाह मशवरा नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे के माहिरीन के साथ किया गया। ये मीटिंग आइंदा मरकजी बजट 2026-27 के सिलसिले में मुनाकिद की गई। मीटिंग में बिजली की वजारत, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत के सेक्रेटरीज, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और भारतीय हुकूमत के आला इक्तिसादी मुशीर ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 रहनुमाओं की 3 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। उन्होंने 2016 और बाद में 2018 और 2023 में ब्रिक्स की 2 सरबराह कॉन्फ्रेंसेज में शिरकत के लिए जोहान्सबर्ग का दौरा किया था। हमारे नामा निगार ने बताया है कि 2014 से अब तक वजीर आजम मोदी की ये 12वीं G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस है। पेश है एक रिपोर्ट।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी अफ्रीकी सरजमीन पर अब तक की पहली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज शाम जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। इस 3 रोजा इज्तिमा के दौरान वो सभी इजलास में शिरकत करेंगे और भारत की बुनियादी तरजीहात पेश करेंगे, जिनमें आलमी जुनूब की तश्वीश, पायदार तरक्की, आबो हवा में मुतालिक कार्रवाई, तवानाई की तरसील और आलमी हुक्मरानी में इसलाहात शामिल है। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग वो जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा और बहुत से आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वो भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, इब्सा के रहनुमाओं की मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। ये G20 की चौथी लगातार कॉन्फ्रेंस है जिसका इनेकाद आलमी जनूब खित्ते में किया जा रहा है। इस साल का मौजू है यगानगत, मुसावात और पायदारी। जनूबी अफ्रीका ने अपनी सदारत के तहत कुदरती आफात से निमटने के निजाम को मुस्तकम बनाने, कम आमदनी वाले मुल्कों के कर्जे के तसलसल को यकीनी बनाने और सबकी शमूलियत वाली नीज पायदार तरक्की के लिए तवानाई की मुसावियाना तरसील और अहम मादनियात को बरूएकार लाने के लिए रुकूम की आमदोरफ्त को मुस्तकम बनाया है। जोहान्सबर्ग से आसुनो की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
वजीर आजम ने इससे पहले रुखसत होते हुए अपने बयान में कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसा मौका है जब बुनियादी आलमी मामलात पर बातचीत की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कॉन्फ्रेंस में भारत का नजरिया पेश करेंगे, जो वासुदेव कुटुम्बकम और एक कुर्रे अर्ज, एक कुनबा और एक मुस्तकबिल के मुल्क के नजरिए के मुताबिक है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के बैन अलाक्वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी 2025 का आज दूसरा दिन है। ये इस फेस्टिवल का 56वां एडिशन है। इत्तलातो नशरियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने बावकार मास्टर क्लासेस का इफ्तिताह किया। उनके साथ इत्तलातो नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू भी थे। ये तकरीब गोवा के शहर पनाजी में कला एकेडमी में मुनाकिद हुई। मारूफ फिल्म साज मुजफ्फर अली भी इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। वो इफ्फी 2025 की पहली मास्टर क्लास ले रहे हैं। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स की पहले मरहले की जांच एफएलसी आज से कोलकाता के शहर न्यू टाउन में शुरू कर दी गई है। सीनियर नायब इंतखाबी अफसर ज्ञानेश भारती की कयादत में ईसीआई की ये टीम वर्कशॉप में मौजूद है। ये टीम मगरबी बंगाल में एसआईआर का जायजा ले रही है। भारत के इंतखाबी कमीशन के सेक्रेटरी मधुसूदन गुप्ता और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ईसीआईएल के सीनियर नायब जनरल मैनेजर पीसी मोंडल ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। जब से खसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर का काम शुरू किया गया है, मगरबी बंगाल में हजारों गैर कानूनी बंगलादेशी तारिकीन वतन मुख्तलिफ सरहदी चौकियों के जरिए भारत से वापस जा रहे हैं। सरहदी हिफाजती फोर्स पीएसएफ इन बंगलादेशी बाशिंदों को इनकी बायोमेट्रिक्स हासिल करने और जरूरी दस्तावेजात का अमल पूरा करने के बाद बॉर्डर गार्ड बंगलादेश बीजीबी के हवाले कर रही है। शिमाली 24 परगना के हमारे जिला नामा निगार ने बताया है कि बहुत से बांग्लादेशी जो भारत में गैर कानूनी तौर से दाखिल हुए थे, मुल्क से वापस जा रहे हैं। ये लोग स्वरूप नगर की हकीमपुर चौकी के रास्ते वापस जा रहे हैं। कुछ गैर कानूनी दरअंदाज भारत में 10 साल से ज्यादा अरसे से रह रहे थे और इन्होंने वोटिंग में भी हिस्सा लिया। इन लोगों ने कई सरकारी फलाही स्कीमों में भी अपना नाम दर्ज कराया हुआ था। हकीमपुर चौकी पर बीएसएफ ने बताया कि जब से मगरबी बंगाल में एसआईआर शुरू किया गया है, तकरीबन 1600 बांग्लादेशी वापस जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में खसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर का काम पूरी रियासत में जारी है। हमारे नामा निगार से बात करते हुए रियासत के आला इंतखाबी अफसर नवदीप रिनवा ने वोटरों से जोर देकर कहा है कि वो अपने शुमारियाती फार्म मुकम्मल करके बरवक्त जमा करा दें। एसआईआर का ये अमल वाराणसी जिले में भी जारी है। जिला इंतखाबी अफसर सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक ये शुमारियाती फार्म जिले में 31,53,000 वोटरों को तकसीम किए जा रहे हैं। आज सुबह एक दरमियानी सतह के जलजले ने ढाका और बांग्लादेश के बहुत से इलाकों को हिलाकर रख दिया, जिसकी वजह से रिहायशी घरों से बाहर आ गए, क्योंकि जलजले की वजह से इमारतें लरजने लगी थी। बांग्लादेश के महकमे मौसमियात के मुताबिक ये जलजला आज सुबह 10:10 पर 5.7 शिद्दत का था, जिसका मरकज नरसिंगडी जिले के तहत मदाबदी में था। ढाका में कुछ सेकंड्स के लिए शदीद झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से कसीर मंजिला इमारतें लरजने लगी। इस जलजले के झटके कोलकाता, असम और शिमाल मशरिकी खित्ते के बहुत से इलाकों में भी महसूस किए गए। बैडमिंटन में भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल मैच में इंडोनेशियाई जोड़ी फजरुल फयान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री से 19-21, 15-21 से शिकस्त खाकर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन से बाहर हो गए हैं। इस शिकस्त से टूर्नामेंट में उनका मुकाबला खत्म हो गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल जनूबी अफ्रीका में मुनाकिद होने वाली G20 सरबरा कॉन्फ्रेंस में आलमी जनूब की तशवीश, आबोहवा और तवानाई की तरसील के बारे में इजहार ख्याल करेंगे। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने बीएसएफ को दुनिया में जदीद तरीन और एक जारहाना फौज बनाने के लिए 5 साल का निशाना मुकर्र किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में बजट से पहले के 11वें सलाह मशवरे की सदारत की। भारत के 56वें बैन अलाक्वामी फिल्म फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। बांग्लादेश में आज सुबह 5.7 शिद्दत का जलजला आया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।